पृष्ठ 35 अवस्थाएं। भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से कथा वस्तु के भाग या अंग बतलाए गए हैं। नाटकों में फल की प्राप्ति की इच्छा से किए हुए कार्य के व्यापार की दृष्टि से 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। ये प्रारंभ से लगाकर फलागम तक की एक प्रकार की अवश्रेणियाँ हैं। ये अवस्थाएं इस प्रकार है। अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थभिः आरम्भ यत्न प्रत्याशा नियताप्ति फलागमः। दश रूपक। एक आरंभ। 6 यह कथानक का प्रारंभ है। इसमें किसी फल के लिए उत्सुकता होती है, जैसे शकुंतला नाटक में शकुंतला को देखने की इच्छा। 2 यत्न, जो इच्छा पृष्ठ 34 होती है उसकी पूर्ति का यत्न किया जाता है। दुष्यंत का मांडव्य से उसके बारे में सलाह करना यह सब प्रयत्न है। 3 प्रत्याशा, प्राप्ति की संभावना, इसमें विघ्नों का निवारण होकर फल प्राप्ति की आशा दिखाई जाती है। शकुंतला की प्राप्ति में दुर्वासा ऋषि का शाप विघ्न बन जाता है। 4 अंक के विष्कम्भक में उनके कोप के किंचित शमन हो जाने से प्रत्याशा शुरू हो जाती है, लेकिन वह आशा मात्र रहती है। उसमें शाप से मुक्त होने के रास्ते का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 4 नियताप्ति, इस चौथी श्रेणी में प्राप्ति की संभावना मात्र न रहकर निश्चितता आ जाती है। अंगूठी के मिल जाने से मिलन की आशा निश्चित सी हो जाती है। 5 फलागम, फल की प्राप्ति, हमारे यहाँ के नाटक सुखांती होते थे, इसलिए उनमें फल की प्राप्ति ही हो ही जाती थी। 7 अंक में शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हो जाता है। यूरोपीय समीक्षा शास्त्र में भी इसी प्रकार की 5 अवस्थाएं मानी है। वे इस प्रकार है। 1 व्याख्या, 2 प्रारंभ संघर्ष में घटना, संघर्ष आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। 3 कार्य का चरम सीमा की ओर बढ़ना, द्वंद्व संघर्ष या समस्या स्पष्टता को पहुंच जाती है। 4 चरम सीमा, जहां पर संघर्ष अंतिम सीमा को पहुंच जाता है वहीं क्राइसिस आ जाता है। संघर्ष हमेशा नहीं चल सकता, क्राइसिस पर उसका फल इधर या उधर होने लगता है। 5 संघर्ष में 2 दल होते हैं, उनमें एक पक्ष का ह्रास होने लगता है और दूसरे पक्ष की विजय की संभावना हो जाती है। इसको कार्य की ओर झुकाव या डेन्यूमा कहते हैं। 6 अंतिम अवस्था में जब कार्य हो जाता है इसको कैटास्ट्रोफी कहते हैं। यही फल होता है, यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। साधारण भाषा में कैटास्ट्रोफी बुरे फल को कहते हैं, मूल अर्थ में इसका अर्थ अंतिम फल है। नाटक के उतार चढ़ाव का इस प्रकार सांकेतिक निरूपण किया जा सकता है। रेखाचित्र पृष्ठ 35। अपने यहाँ के नाटक में संघर्ष होता अवश्य था, किंतु उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। यूरोपीय नाटक रचना में संघर्ष की मुख्यता रहती है। वहाँ संघर्ष चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाह्य, नाटक की जान माना जाता है। हमारे यहाँ वह फल सिद्धि में एक बाधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्कृत नाटकों की कथा वस्तु में संघर्ष अनुमेय रहता है, स्पष्ट नहीं होता। हमारे यहाँ फल भी निश्चित सा ही रहता था। वह था नेता के अभीष्ट सिद्धि। नाट्य शास्त्र में मानी हुई अवस्थाओं की इनसे पूरी समानता तो नहीं हो सकती है, किंतु वे इनसे मिलती जुलती हैं। आरंभ नाम की अवस्था पहली अवस्था से मिलेगी, प्रयत्न दूसरी से, प्रत्याशा में तीसरी और चौथी की कुछ झलक आ जाएगी, नियताप्ति 5वीं से मिलेगी और फलागम 6ठी से। हमारे यहाँ की अवस्थाओं का इस प्रकार सांकेतिक निरूपण किया जा सकता है। रेखाचित्र है। 1 एक से प्रारंभ होता है। 2 दूसरी में प्रयत्न शुरू होता है, वह कार्य को आगे बढ़ाता है, फिर कोई बाधा आ जाती है, गिरी हुई लकीर बाधा की द्योतक है। 3 प्रत्याशा में बाधा मिटने की आशा हो जाती है। 4 नियताप्ति में इसका निश्चय हो जाता है। 5 फलागम में फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ प्रकृतिया, इसका अभिप्राय कथा वस्तु के उन चमत्कारपूर्ण अंगों से है जो कथा वस्तु को कार्य के लिए ले जाते हैं। अर्थ प्रकृतियों को दश रूपक के टीकाकार धनिक से प्रयोजन सिद्धि हेतु कहा है। ये भी 5 है। 1 बीज, 2 बिंदु, 3 पताका, 4 प्रक्रिय और 5 कार्य। इनमें बीज तो प्रारंभ नाम की अवस्था से मिलता है। जिस प्रकार बीज में फल छिपा रहता है उसी प्रकार बीज में नाटक के फल की संभावना रहती है। बिंदु में तेल की बूंद का रूपक है, यह पानी के ऊपर फैलकर विस्तार का द्योतक बन जाता है। पताका और प्रक्रिय में छोटी अवांतर कथाएं होती हैं, जो मूल कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं, और कार्य अंतिम फल को कहते हैं। कार्य और फलागम तो मिल जाते हैं, किंतु प्रत्याशा और नियताप्ति पताका और प्रक्रिय से मेल नहीं खाती। प्रक्रिय द्वारा प्राप्ति की आशा हो जाने के आधार पर, अर्थात शकुंतला में दुर्वासा के प्रसन्न होने पर, शायद प्रक्रिय और प्रत्याशा का तादात्म्य किया गया है। पृष्ठ 36। संधियां। संधिया कहते हैं मेल या जोड़े को। इसमें अवस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों का मेल कराया जाता है। ये संधियां एक एक अवस्था की समाप्ति तक चलती हैं और उनके अनुकूल अर्थ प्रकृतियों से योग करती हैं, कराती हैं। ये संख्या में 5 हैं। पहला मुख, 2 प्रतिमुख, 3 गर्भ, 4 विमर्श या अवमर्श तथा 5 निवारण अथवा उपसंहार। प्रारंभ नाम की अवस्था के साथ योग होने से जहाँ अनेक रसों और अर्थों के द्योतक बीच की उत्पत्ति होती है, वहाँ मुख संधि होती है। प्रतिमुख में बीच कुछ लक्ष्य और अलक्ष्य रूप से विकसित होता है, होता हुआ दिखाई देता है। उपाय के दब जाने और उसकी खोज के कारण विस्तार और भी अधिक दिखाई पड़ता है। यह गर्भ संधि इसलिए कहलाती है कि इसके भीतर फल छिपा रहता है। इसमें प्रत्याशा और पताका का योग रहता है। अवमर्श में नियताप्ति और प्रक्रिया का योग रहता है और नई बाधा उपस्थित होती है। गर्भ और अवमर्श संधियों में पताका और प्रक्रिया की प्रत्याशा और नियताप्ति से योग आवश्यक नहीं है। निवरण संधि में कार्य फलागम का योग होकर नाटक पूर्णतया को प्राप्त होता है। अर्थ प्रकृतियों और अवस्थाओं में यही अंतर है कि अर्थ प्रकृतियां कार्य की सिद्धि के हेतुओं अर्थात उपायों व साधनों से संबंध रखती हैं। अर्थ प्रकृतियां कार्य सिद्धि हेतु साहित्य दर्पण, अवस्थाएं उस सिद्धि की ओर अग्रसर होने की श्रेणियां हैं। संधियां अर्थ प्रकृतियों और अवस्थाओं के मेल से बने हुए कथानक के चमत्कारिक अंशों को कहते हैं। दश रूपक में संधि का लक्षण इस प्रकार दिया है। अर्थ प्रकृतियां पंचावस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंच संधेय दश रूपक, अर्थात जहाँ 5 अर्थ प्रकृतियां यथाक्रम रूप से समन्वित हो, वहाँ क्रमशः मुखादि 5 संधियां उत्पन्न होती हैं। साहित्य दर्पणकार ने भी प्राय यही परिभाषा दी है। इसमें इति वृत्तस्य भागा और जोड़ दिया है, अर्थात वे कथानक के भाग हैं। तीनों में दृष्टिकोण का भेद है। अर्थ प्रकृतियां कार्य सिद्धि के साधनों से, अवस्थाएं कार्य सिद्धि की श्रेणियों से, और संधियां कथानक के भाग से संबंध रखती हैं। संधि के 5 उद्देश्य दश रूपककार ने बताए हैं। 1 इष्टार्थ की रचना, 2 छिपा लेने योग्य अंश का गोपन, 3 प्रकाश करने योग्य अंश का प्रकाश, 4 राग प्रयोग और 5 आश्चर्य उत्पन्न करना। इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्य गुतिः प्रकाशनम् राग प्रयोगस्याश्चर्यम् वृत्तान्तस्यानुपक्षयः दश रूपक। इस प्रकार संधि का संबंध वृत्तांत से अर्थात कथानक से संबंधित है। ये कार्यावस्थाओं से और अर्थ प्रकृतियों को जोड़ने का कार्य करती हैं। पृष्ठ 37। संधियों का सांकेतिक निरूपण नीचे सारणी में नीचे दिया जाता है। संधि रेखाचित्र। पृष्ठ 38। रत्नावली में मुख संधि नाटक के आरंभ से लेकर दूसरे अंक के उस स्थान तक जहां सागरिका अर्थात रत्नावली राजा का चित्र बनाती है चलती है। प्रतिमुख संधि सागरिका के चित्र तैयार करने से आरंभ होकर दूसरे अंक के उस अंश तक चलती है जहां महारानी वासुदत्ता महाराज उदयन को सागरिका का बनाया हुआ चित्र देखते हुए पकड़ लेती है और उसका और अपना रोष प्रकट करती है। गर्भ संधि रत्नावली में तीसरे अंक में आती है जहां सागरिका वासुदत्ता का वेश धारण कर आत्महत्या का उद्योग करती देखी जाती है। राजा और विदूषक उसे इस कार्य से विरत कर देते हैं। राजा को यह जानकर प्रसन्नता होती है कि वह रानी नहीं है, सागरिका है। उससे हृदय खोलकर बात करते हैं। रानी आ जाती है और क्रोध प्रकट करती है। इस प्रकार राजा का रानी और सागरिका से बार बार मिलन और विच्छेद होता है। अवमर्श या विमर्श संधि रत्नावली के चौथे अंक में उस स्थान तक चलती है जबकि अग्नि के कारण गड़बड़ मचती है। निवारण संधि अवमर संधि के अंतिम से चौथे अंक तक चलती है। अर्थोक्षेपक कथा वस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहती है। वह जो प्रधान रूप से मंच पर घटित होती हुई दिखाई जाती है, इसको दृश्य काव्य कहते हैं। दूसरी वह जिसको घटती हुई दिखलाकर उसके पात्रों द्वारा सूचना दिला दी जाती है, जिससे कि कथानक की पूर्ति हो सके, इसको सूच्य कहते हैं। कुछ दृश्य तो मंच पर वर्जित रहते हैं, जैसे मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, स्नान, भोजन आदि। इस चीजों का मंच पर दिखलाना रस में बाधा डालता है, इसलिए ऐसे दृश्यों को विरोधक कहते हैं। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो अभिनय के योग्य नहीं होते अथवा गौण होते हैं, किंतु कथा का सूत्र मिलाए रखने के लिए इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो सामग्री प्रधान रूप से मंच पर दिखाई जाती है, वह अंकों और दृश्यों में बढ़ जाती है। अंक समाप्त होने पर सब पात्र बाहर निकल जाते हैं। अर्थोक्षेपक के भेद। सूच्य वस्तु की सूचना देने के जो साधन है उनको अर्थोक्षेपक कहते हैं। ये पांच होते हैं। क विष्कम्भक यह वह दृश्य है जिसमें पहले हो जाने वाली या बाद में होने वाली घटना की सूचना दी जाती है। यह केवल दो पात्रों का ही कथोपकथन होता है। ये पात्र प्रधान पात्रों में नहीं होते। यह अंक के पहले अर्थात नाटक के आरंभ में अथवा दो अंकों के बीच में आ सकता है। यह दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध और दूसरा संक, जिसमें पात्र उत्तम श्रेणी के होते हैं और संस्कृत बोलते हैं वह शुद्ध कहलाता है, और जिसमें पात्र मध्यम और निम्न श्रेणी के होते हैं और संस्कृत के साथ प्राकृत भी बोलते हैं वह संकर कहलाता है। अब ये भेद कुछ निरर्थक से हो गए हैं, क्योंकि आजकल ऊंच नीच का कोई अंतर नहीं रहा है और न प्राकृत और संस्कृत बोलने वाले पात्र ही रहे हैं। इन सब का ऐतिहासिक महत्व अवश्य है। पृष्ठ 39। ख चूलिका जिस कथा भाग की पर्दे के पीछे से, जिसको संस्कृत नाटककार नेपथ्य में ऐसा संकेत कर लिखा करते थे, सूचना दी जाती है, उसे चूलिका कहते हैं। जैसे महावीर चरित्र में चौथे अंक के में विष्कम्भक के आदि में आए हुए नीचे के अवतरण से यह सूचित हो जाता है कि रामचंद्र जी द्वारा परशुराम पर विजय प्राप्त कर ली गई है और आगे यही प्रसंग चलेगा। पर्दे के पीछे सुनो जी सुनो देवताओं, मंगल मनाओ मनाओ, जय कृषाश्व के शिष्य वर विश्वामित्र मुनि, जय जय दिनपति वंश के क्षत्रिय अवध के ईस, अभय करता जो जगत को करी भृगुपति मद मंद, शरण दे त्रैलोक के कहे जयति भानुकुल चंद। लाला सीतापति भूप द्वारा अनुवादित। ग अंकास्य अंक के अंत में जहाँ बाहर चले जाने वाले पात्रों द्वारा अगले अंक की कथा की सूचना दिलाई जाती है, उसे अंकास्य कहते हैं। इसके द्वारा खेले हुए अंक की कथा के साथ खेले जाने वाले अंक की संगति मिला दी जाती है। महावीर चरित के दूसरे अंक के अंत में सुमंत्र कहते हैं, सुमंत आता है। सुमंत्र वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आप लोगों को परशुराम जी समेत बुला रहे हैं, और सब दोनों महात्म्य कहाँ हैं? सुमंत्र महाराज दशरथ के डेरे में। राम बड़ों की आज्ञा से मुझे जाना पड़ता है। सब चलो वहीं चले। सब बाहर जाते हैं। अगले अंक अर्थात तीसरे अंक का दृश्य दशरथ के डेरे से प्रारंभ होता है और पूर्व अंक की सूचना के अनुसार ही वशिष्ठ और विश्वामित्र परशुराम से वार्तालाप करते हैं। घ अंकावतार जहाँ पर बिना पात्रों के बदले हुए पहले अंक की ही कथा आगे चलाई जाती है, वहाँ अंकावतार होता है। पात्र वे ही रहते हैं, पहले अंक के पात्र बाहर जाकर फिर लौट आते हैं। मालविकाग्नि के प्रथम अंक में राजा योगिनी आदि जो पात्र बातचीत करते हैं, वे ही दूसरे अंक में दिखाए जाते हैं। अंग प्रवेशक प्रवेशक द्वारा घटनाओं की सूचना दी जाती है। विष्कम्भक और प्रवेशक में यह भेद है कि प्रवेशक दो अंकों के बीच में ही आता है। इसके पात्र सब निम्न श्रेणी के होते हैं और प्राकृत बोलते हैं। शकुंतला में सिपाही और मछली बेचने वाले की बातचीत प्रवेशक का अच्छा उदाहरण है। पृष्ठ 40। चूलिका विष्कम्भक आदि से वह काम निकलता है जो उपन्यास या महाकाव्य में लेखक या कवि द्वारा दिए हुए घटनाओं के विवरण से होता है। इनमें रसोत्पादन की अपेक्षा विवरण का नाटकीय ढंग से प्रयोग होता है। कथोपकथन अर्थात संवाद। नाटक की कथा वस्तु कथोपकथन अथवा संवाद के रूप में ही रहती है। यह सामाजिकों अथवा दर्शकों के लिए तो श्राव्य रहती ही है, किंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके सुनने से कुछ पात्र वर्जित कर दिए जाते हैं। इसी आधार पर कथोपकथन के तीन विभाग किए गए हैं। कथोपकथन के प्रकार, एक श्राव्य या सर्वश्राव्य, जो सबके सुनने के लिए हो, इसी को प्रकट या प्रकाशन भी कहते हैं। दो, अश्राव्य, जो दूसरों के सुनने के लिए न हो, यह एक प्रकार का मुखरित रूप से विचार करना है, इसी को स्वागत या आत्मगत कहते हैं। यद्यपि आजकल इसको स्वाभाविकता के विरुद्ध समझकर इसके हटाने का उद्योग किया जाता है, तथापि कहीं कहीं इसका प्रयोग स्वाभाविकता बढ़ाने वाला होता है। भावावेश में लोग स्वागत बोलने लग जाते हैं, किंतु यह बड़ा न होना चाहिए। आजकल स्वागत की अस्वाभाविकता मिटाने के लिए एक विश्वास पात्र को मंच पर ले आते हैं, जिसके आगे पात्र अपना हृदय खोलकर रख देता है। इसमें आत्मविश्लेषण अच्छा हो जाता है। उपन्यासकार जो कुछ विश्लेषणात्मक चित्रण द्वारा उपस्थित करता है, वह इससे हो जाता है। तीन, नियत श्राव्य, जो कुछ पात्रों के सुनने के लिए हो और कुछ के लिए न हो, यह दो तरह का है, एक अपवारित और दूसरा जनांतिक। अपवारित में जिस पात्र से बात को छिपाना हो, उसकी ओर से मुंह फेर कर बात कही जाती है। जनांतिक से अंगूठा और कन अंगुली को छोड़कर तीन अंगुलियों की पताकसी बनाकर उसकी ओर से एक या दो पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से बात की जाती है। आकाश भाषित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है। इसमें कोई पात्र आकाश की ओर मुंह उठाकर किसी कल्पित व्यक्ति से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वह क्या कहा आदि ऐसे वाक्य कहता जाता है, जिससे मालूम पड़े कि वास्तव में किसी दूसरे से बात कर रहा है। यह आकाशवाणी नहीं है। प्राचीन रूपकों में भाड़ नाम का एकांकी आकाश भाषित के ही रूप में होता है। साधारण नाटकों में भी, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में भी आकाश भाषित का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का विशिष्य विश्मोसधम नाम का भाड़ इसका अच्छा उदाहरण है।